लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं संत पापा फ्रांसिस का 40वां संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने 40वां संदेश में विश्वास, आशा और प्रेम को नवीकृत करने हेतु सभी विश्वासियों का आह्वान किया। अपने 40वां संदेश में संत पापा ने लिखा, पास्का की ओर 40वां की हमारी यात्रा में हम उन्हें याद करें जिन्होंने अपने को मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बना लिया। 40वां के इस आत्म परिवर्तन समय में हम अपने विश्वास को नवीकृत करते हुए जीवन जल से अपनी आशा को सिंचित करें, खुले हृदय से ईश्वर के प्रेम को स्वीकार करें जहाँ हम एक दूसरे के लिए भाई बहने बनते हैं। 40वां की यह यात्रा हम ख्रिस्तियों के लिए तीर्थ यात्रा की भांति है जो हमें पुनर्जीवित प्रभु की ज्योति से आलोकित करता है, हमारे सोच विचारों को प्रभावित करता जिसके अनुरूप हम यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करने के योग्य बनते हैं। यीशु ख्रिस्त अपनी शिक्षा में उपवास, प्रार्थना और दान देने की बातें कहते हैं जो हममें परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है। उपवास हमारे लिए निर्धनता और आत्म त्याग का मार्ग है। गरीबों की चिंता और प्रेम पूर्ण उनकी सेवा हमारे लिए दान पुण्य के कार्य हैं। तो वहीं बाल्य मनोभाव से ईश्वर के साथ वार्ता करना प्रार्थना का प्रतिरूप है जो हमारे विश्वास को निष्ठा में, आशा को जीवटता और प्रेम को प्रभावकारी ढंग से जीने में मदद करता है। विश्वास हमें सच्चाई को स्वीकार करने और ईश्वर तथा अपने भाई बहनों के बीच साक्ष्य देने की मांग करता है। इस 40वां काल में सच्चाई सर्वप्रथम हमारे हृदय को ईश वचन हेतु खोलना है जिसे कलीसिया पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करती आ रही है। यह कोई अमूर्त विचार नहीं जो कुछ एक विद्वानों के लिए हो, बल्कि यह एक संदेश है जिसे हम सभी अपने में प्राप्त करते हुए समझ सकते हैं, जिसके द्वारा हम पूरे हृदय से ईश्वरीय महानता हेतु अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं जो हमारी चेतना से पहले ही हमें प्रेम करते हैं। यीशु ख्रिस्त स्वयं सत्य हैं। हमारी मानवता को अपने में धारण करते हुए उन्होंने अपने को हमारी तरह बना लिया जिससे वे हमें परिपूर्ण जीवन की ओर ले सकें। उपवास उनकी सहायता करता है जो उसे हृदय से लेते हुए ईश्वर के उपहार को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम उनके रूप में बनाए गए हैं जो हमें उनमें पूर्णता की प्राप्ति हेतु मदद करता है। दरिद्रता की अनुभूति का आलिंगन करते हुए जो उपवास करते हैं वे अपने को गरीबों के साथ एक करते हुए ईश्वर के प्रेम में उपहार को ग्रहण करते और उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। इस भांति उपवास हमें ईश्वर और अपने पड़ोसियों को प्रेम करने में मदद करता है। संत थॉमस अक्विनस इसके बारे में कहते हैं, प्रेम हमें अपने जीवन को दूसरों की ओर केंद्रित करने में मदद करता है और हम उन्हें अपने जीवन का अंग समझते हैं। 40वां काल विश्वास करने का समय है जहां हम ईश्वर को अपने जीवन में स्वागत करते और उन्हें अपने जीवन में निवास स्थान तैयार करने को कहते हैं। उपवास हमें उन चीजों से मुक्त कराता है जो हमारे जीवन को बोझिल बनाते हैं। इस तरह हम अपने को अपने हृदय द्वार को उनके लिए खोलते हैं जो गरीब बनकर हमारे बीच आए। आशा जीवन पाने की तरह हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। सामारी नारी नहीं समझती है कि यीशु उसे क्या कहना चाहते हैं, मैं तुम्हें जीवन पानी प्रदान करूँगा। निसंदेह वह भौतिक जल के बारे में सोचती है, लेकिन यीशु उसे पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे होते हैं जिसे वे पास्का रहस्य में प्रदान करते हैं जो आशा के रूप में हमें कभी हताश नहीं करता है। यीशु ख्रिस्त ने इस आशा के बारे में पहले ही कहा जब उन्होंने अपने दुख भोग और मृत्यु की चर्चा की, मैं तीसरे दिन पुनर्जीवित होऊंगा। यीशु भविष्य के बारे में कहते जो पिता के करुणा में हमारे लिए खुला है। उनमें आशा करने का अर्थ यही है कि इतिहास, गलतियों, हिंसा और अन्याय के कारण या पापों के कारण जो प्रेम को सूली पर चढ़ा दिया, खत्म नहीं होता। इसका अर्थ खुले हृदय से पिता की क्षमाशीलता को ग्रहण करना है। कठिनाई के इस समय में आशा के बारे में चर्चा करना चुनौती भरा लगता है, फिर भी चालीसा हमारे लिए खासकर आशा की अवधि है, जहां ईश्वर धैर्य में अपनी सृष्टि की देखरेख करते हैं, जिसे हमने बहुत बार दोहन किया है। संत पौलुस हमें मेल मिलाप पर अपनी आशा बनाए रखने को कहते हैं। आप ईश्वर से मेल मिलाप कर ले, संस्कार में अपने पापों की क्षमा प्राप्ति के द्वारा जो हमारे हृदय में परिवर्तन लाता है, हम दूसरों को क्षमा देने के योग्य बनते हैं। क्षमा प्राप्ति के द्वारा हम स्वेच्छा से दूसरों के संग वार्ता में प्रवेश करते और दुख तथा पीड़ा की स्थिति में पड़े लोगों को सांत्वना प्रदान करते हैं। ईश्वर की क्षमा द्वारा हम अपने वचनों और कार्यों में भ्रातृत्व के पास्का का अनुभव करते हैं। संत पापा लिखते हैं, चालीसा के समय में हम सांत्वना, साहस, प्रोत्साहन और धैर्य जैसे शब्दों पर अधिक ध्यान दें, न कि दुख, क्रोध या किसी को नीचा दिखलाने वाले शब्दों पर। दूसरों में आशा उत्पन्न करना हमें सिर्फ दूसरों पर दया दिखाने की मांग करता है। जहां हम अन्य बातों को अपने से दूर करने की चाह रखते और दूसरों पर रुचि रखते, उन्हें मुस्कान की दृष्टि से देखते, प्रोत्साहन के शब्द कहते और उदासीनता के बदले उनकी बातों को सुनते हैं। मेल मिलाप और शांतिमय प्रार्थना के द्वारा आशा हमारे अंतःकरण में ज्योति की भांति प्रदीप्त होती, जो प्रेरिताई कार्य की चुनौतियों का सामना करने में हमें मदद करती है। अतः एकांत में ईश्वर से प्रेम पूर्ण मिलन हेतु हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। चालीसा के समय आशा के अनुभव में बढ़ना हमें यीशु ख्रिस्त में इस बात को अनुभव करने की मांग करता है कि हम सभी नवीनता के साक्ष्य हेतु बुलाए गए हैं, जहां ईश्वर सभी चीजों को नया बना देते हैं। इसका अर्थ ख्रिस्त में आशा को ग्रहण करना है, जो अपने क्रूस मरण और तीसरे दिन ईश्वर द्वारा पुनर्जीवित किए गए, जो हमें विनम्रता में दूसरों का उत्तर देने हेतु सदा तैयार रखता है, जो हमसे प्रश्न करते हैं।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से
प्रेम अपने में विश्वास और भरोसे से बड़ी अभिव्यक्ति है। प्रेम दूसरों के विकास को देखकर आनंदित होता है, अतः यह अपने में दुखित होता है जब वह दूसरों को तकलीफ, अकेलेपन, बीमार, आश्रयविहीन, परित्यक्त या जरूरत की स्थिति में देखता है। प्रेम हृदय से प्रवाहित होता है, जो हमें अपने आप से बाहर ले जाता और हमें एकता और सामुदायिकता के निर्माण में मदद करता है। सामाजिक प्रेम हमें प्रेम की सभ्यता में बढ़ने को मदद करता है, जिसके लिए हम सबों का बुलावा हुआ है। इसका स्वभाव वैश्विकता है, जो हमें एक नई दुनिया तैयार करने के योग्य बनाता है। यह एक भावना मात्र नहीं, बल्कि यह एक साधन है, जो सबों के विकास हेतु प्रभावकारी मार्गों की खोज करता है। प्रेम एक उपहार है, जो हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करता है। यह हमें जरूरतमंदों को अपने परिवार के सदस्यों, भाई बहनों, मित्रों की तरह देखने में मदद करता है। छोटी सी चीज भी जिसे हम प्रेम से दूसरों को देते अपने में खत्म नहीं होती, बल्कि जीवन और आनंद का एक स्रोत बनती है। इसे हम सरेपता के विधवा के दृष्टांत में देखते हैं, जो नबी इलियस को रोटी प्रदान करती है। यह हमें रोटी के दृष्टांत की ओर भी इंगित कराता है, जो तोड़ा गया और यीशु के द्वारा शिष्यों को लोगों के बीच बांटने हेतु दिया गया। प्रेम में चालीसा का अनुभव करने का अर्थ हमारे लिए उनकी चिंता करना है, जो दुख या परित्यक्त स्थिति में हैं, जो कोविड-19 के कारण अपने को भयभीत पाते हैं। अनिश्चित भविष्य के इस परिस्थिति में हम यीशु के वचनों की याद करें, जो अपने सेवक से कहते हैं, डरो मत, मैंने तुम्हें मुक्त किया है। अपनी करुणा में हम दूसरों के लिए ईश्वर के प्रेम वचन को घोषित करें और उन्हें ईश पुत्र पुत्रियां होने की अनुभूति प्रदान करें। करुणा की निगाहें हमें दूसरों के सम्मान को पहचान प्रदान करने में मदद करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम गरीबों को मानव सम्मान प्रदान करते, उनकी पहचान और संस्कृति को स्वीकार करते और उन्हें समाज का अंग बनाते हैं। संत पापा कहते हैं, हमारे जीवन का हर क्षण विश्वास, आशा और प्रेम का समय है। चालीसा की यात्रा हमें अपने में परिवर्तन लाने, प्रार्थना करने और अपनी वस्तुओं को दूसरों के संग साझा करने का निमंत्रण देता है। यह हमें समुदाय और व्यक्तिगत रूप में अपने विश्वास को नवीकृत करने में मदद करता है, जो यीशु ख्रिस्त की ओर से आता है। आशा पवित्र आत्मा के द्वारा सांस के रूप में हम पर फूंका जाता है और प्रेम हमारे लिए पिता के हृदय से प्रवाहित होता है।
सिखाता आपस में बुराई न करना तू जीवन में,
रहना सिखाता आपस में बुराई न करना तू जीवन में,
अपनी बड़ाई जो करता नहीं में उसका नाम है,
अपनी बड़ाई जो करता नहीं दुनिया में उसका नाम है,
प्रेम करो प्रेम रखो ईश्वर प्रेम से आया है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। मंगलवार शाम को इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तरेल्ला को टेलीग्राम के माध्यम से भेजे गए एक संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हुए हमले के बारे में दुख व्यक्त किया, जिसमें इटली के राजदूत लुका अतनासियो, एक पुलिस अधिकारी और उनके चालक की मृत्यु हो गई। तीनों संयुक्त राष्ट्र के एक काफिले में यात्रा कर रहे थे। संत पापा फ्रांसिस ने टेलीग्राम में कहा कि खबर सुनते ही वे बहुत दुखित हो गए। उन्होंने लिखा, मैं उनके परिवारों, राजनयिक कोर और शांति के इन सेवकों की मौत पर काराबिनियरी के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। संत पापा ने तब इतालवी राजदूत लुका अतनासियो के अनुकरणीय गवाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक ख्रिस्तीय और उत्कृष्ट व्यक्ति थे। संत पापा फ्रांसिस ने अफ्रीकी देश के बंधुत्व और सौहार्दपूर्ण संबंधों को स्थापित करने वाले राजदूत के समर्थन को भी रेखांकित किया। संत पापा फ्रांसिस ने हमले में मारे गए इटालियन काराबिनियरी के एक सदस्य वित्तोरियो लोकावाची की सेवा की सराहना की। संत पापा ने श्री लोकोवाची को उनकी सेवा में विशेषज्ञ और उदार बताया, जो जल्द ही एक नया परिवार बनाने वाले थे। संत पापा ने दुख संतप्त परिवारों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया। इटली के विदेश मंत्रालय ने बताया कि राजदूत लुका अतनासियो और एक इतालवी काराबिनियरी पुलिस अधिकारी उनके कोंगो वासी चालक मोवाफा मिलमो कोंगो की पूर्वी क्षेत्रीय राजधानी से विश्व खाद्य कार्यक्रम रुतशु में स्कूल परियोजना का दौरा करने के लिए कोमा जा रहे थे। घात लगाकर किए गए हमले में तीनों को गोली लगने से मौत हो गई, जबकि काफिले के अन्य लोग घायल हो गए। WFP ने कहा कि हमला एक ऐसी सड़क पर हुआ जहां सुरक्षा एस्कॉर्ट्स के बिना यात्रा के लिए मंजूरी दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट में हमले की निंदा की, जिसके कारण इतालवी राजदूत, उनके अंगरक्षक और एक सहयोगी की मौत हुई। उन्होंने अपराधियों को न्याय दिलाने का भी आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर महासचिव के प्रवक्ता ने एक बयान में मृतकों के परिवारों के साथ साथ इटली की सरकारों और लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उधर वाटिकन राज्य के विदेश सचिव ने 2021 के सत्र के निरस्त्रीकरण शिखर सम्मेलन में निरस्त्रीकरण की दिशा में किए गए संयुक्त प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला। शांति और बंधुत्व के लिए ठोस और टिकाऊ समझौतों को प्राप्त करने के लिए तात्कालिकता और प्रतिबद्धता का एक नया दृढ़ विश्वास अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वाटिकन राज्य के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघर ने बुधवार 24 फरवरी को जिनेवा में हो रहे 2021 सत्र के निरस्त्रीकरण शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम संत पापा फ्रांसिस की ओर से सौहार्दपूर्ण शांति अभिवादन किया। साथ ही उनकी आशा है कि यह शिखर सम्मेलन तात्कालिकता और सहजिम्मेदारी की एक नई भावना के माध्यम से आवेगों को तेजी से दूर करेगा। वाटिकन विदेश सचिव ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह आवश्यक है कि यह सम्मेलन यह स्वीकार करे कि कुछ मुद्दों को सामान्य भलाई में उनके योगदान के आधार पर संकीर्ण व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठना चाहिए। शांति, सुरक्षा और स्थिरता की इच्छा मानव हृदय की सबसे गहरी लालसाओं में से एक है। हालांकि वर्तमान जलवायु, अविश्वास और बहुपक्षवाद का क्षरण इन महान आकांक्षाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों को बाधित करता है। निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में यह और भी गंभीर है। जबकि निरस्त्रीकरण की असमानता परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के लिए विशेष रूप से स्पष्ट है, यह सैन्य प्रतियोगिता के साथ साथ बाहरी अंतरिक्ष में बढ़ी हुई साइबर स्पेस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में दृढ़ता से लागू होती है। यहाँ राज्यों की जिम्मेदारियाँ हैं जो हमारी सामान्य मानवता के हित में ठोस सीमाओं को जन्म देती हैं। परम धर्मपीठ निरस्त्रीकरण और हथियारों के नियंत्रण की जटिलता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस कारण से सम्मेलन के सदस्य राज्यों को दो प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पहला, परम धर्मपीठ सत्यापन के मुद्दे पर एक विशेषज्ञ अध्ययन में संलग्न होने के लिए निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन को प्रोत्साहित करता है, और दूसरा, परम धर्मपीठ यह भी मानता है कि नियंत्रण और सत्यापन के प्रभावी प्रणालियों के तहत सेनाओं की सीमाओं और सामान्य एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण पर एक औपचारिक चर्चा की बहाली इस सम्मेलन के काम के लिए बेहद फायदेमंद होगी। उधर युद्ध से तबाह देश में हिंसा बढ़ने के बावजूद अफगानिस्तान ने मंगलवार को अपना कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। एस्ट्राजेनेका के टीके की 5,00,000 खुराक की पहली खेप इस महीने की शुरुआत में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से मिली, जो मध्य और निम्न आय वाले देशों के लिए वैक्सीन उत्पादन कर रही है। राष्ट्रपति अशरफ गिनी ने काबुल में राष्ट्रपति महल में उद्घाटन समारोह में कहा, यह एक महान अवसर है और स्वास्थ्य मंत्रालय और पूरे देश के लिए एक महान परीक्षण है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ काम करने के लिए समाज के सभी वर्गों का आह्वान करता हूं। अफगानिस्तान में संक्रमण से 55,600 से अधिक मामले और 2,400 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। उधर घाना में यूनिसेफ के प्रतिनिधि और घाना में WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर फ्रांसिस कोसोलो ने कोविड-19 टीकों वाला जहाज अक्कारा पहुंचने पर अपने बयान में कहा कि अफ्रीका में घाना 6,00,000 कोवैक्स टीकों का पहला ऐतिहासिक शिपमेंट का प्राप्तकर्ता बन गया। कोविड-19 महामारी से घाना में 80,700 से अधिक वायरस से संक्रमित और 580 से अधिक लोगों की जानें चली गई। ये 6,00,000 कोवैक्स वैक्सीन एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के शिपमेंट्स के पहले बैच का हिस्सा है, जो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से मिली। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।